ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की।
ओम शांति। सभी एक बार फिर बोलेंगे ओम शांति। किसी ने कहा है कि मंजिल पर चलते चलते रास्ता भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन एक संकल्प काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। अगर मंजिल का रास्ता खूबसूरत है तो ये न पूछो कि ये रास्ता कठिन है, कब पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचना है। लेकिन अगर रास्ता खूबसूरत है तो ये जरूर पूछो कि ये रास्ता कहां जाता है। हम बाबा के बच्चे चलते 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 जब साइड सीन को देखने लग जाते हैं तब कहीं ना कहीं हम मंजिल से दूर हो जाते हैं, मंजिल हमको अस्पष्ट अनुभव हो जाती है। हम सभी के पास सब कुछ होने के बावजूद, भौतिकता है, साधन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर निरंतर सुख और शांति नहीं रहती है। मैं समझता हूं कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन निरंतर खुशी नहीं रहती है, निरंतर हम आनंदित नहीं रहते हैं। ये बात राइट है? इस बात से आप सहमत है? तो क्या आपने कभी इसका रीजन ढूंढा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन परमात्मा के तरफ जितना समय टिकना चाहिए उतना नहीं टिकता है, उसका रीजन क्या है? थोड़ा हम गहराई में जाएंगे कि हम कहां अटके हुए हैं, कौन सी चीज है कि जो हमें मंजिल से दूर लेके जाती है, बाबा से दूर लेके जाती है। सबसे पहली बात कि हम हर एक के अंदर ये चेकिंग हमको करनी है कि हम उस चीज से अटैच हुए हैं कि जो चीज हमें नहीं मिलती है, और उस चीज को हम प्राप्त करने के लिए अपना पूरा तन मन धन हम लगा देते हैं। हम वो इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और हम कहां अटैच हो गए आप सोचिए। सबसे पहले हम देह से अटैच हो गए। सबसे पहले किससे अटैच हो गए? आत्मा देह से अटैच हो गए। उसके बाद देह के संबंधियों से हम अटैच हो गए। उसके बाद देह के पदार्थ, साधन, वैभव, स्थान, उससे हम अटैच हो गए। और हमने ये सोचा कि अटैच होने से हमको वो चीज मिल जाएगी, लेकिन हुआ यू कि हम और दुखी हो गए। समझ में आ रही है बात? थोड़ा गहराई से समझना। हमारे मन के अंदर हम दुखी कब हो जाते हैं कि जब इन चीजों से हम अटैच हो जाते हैं तब दुख आ जाता है। इन चीजों से आप डिटैच हो जाओ तो आपके जीवन के अंदर प्रेम आ जाता है। सुख और दुख के लिए दो चीजें मायने रखती है कि जहां जहां हम इस भौतिक संसार में जहां जहां अटैच होते जाएंगे वहां वहां हमको दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट एक रोग है, प्रेम एक दवाई है। अटैचमेंट जहां होती है वहां व्यक्ति अधिकार रखता है, जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता देता है। अटैचमेंट में स्वतंत्रता नहीं होती। थोड़ा गहराई से चिंतन करो कि मेरे मन के अंदर दुख की लहर कहां उत्पन्न होती है, जहां मैं अटैच हूं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, स्थान हो, साधन हो, कुछ भी हो, उससे अटैच होते ही मुझे दुख मिलता है, क्योंकि वह निमित्त भाव नहीं रहता है। और जहां निमित्त भाव नहीं है वहां दुख का आना स्वाभाविक है। इसके आप गहराई में अगर और जाएंगे तो जब हम अटैचमेंट रखते हैं उस समय हमारी अटैचमेंट स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ जाती है। कैसी? जब भौतिकता से हमें दुख मिलता है तो हम अपने विचारों पर अड़िग हो जाते हैं, और जब हमारी विचारों से अटैचमेंट हो जाती है कि मैं जो कहता हूं वो राइट है, वो आपको वही करना है, ये हो गए, हम अपने विचारों से भी हम अटैच हो गए, सुख कहां से मिलेगा? ये बात समझ में आ रही? थोड़ी गहरी बात है। हम अपने विचारों से भी अटैच हो जाते हैं कि मैं जो हूं, मेरे जो विचार है वो राइट है, क्योंकि अटैचमेंट में हम दूसरों का सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, दूसरों के विचारों से हम सहमति नहीं होते, प्रेम में वो बात नहीं होती। अटैचमेंट और प्रेम में महान अंतर ही है, ये दो बाजू है, अटैचमेंट दुख है और प्रेम एक सुख है। और ये चीज को हम अटैचमेंट होने के कारण हम समझ नहीं पाते कि ये मोह है या प्रेम है। तो ये चीज को अगर आप गहराई से और गहराई में चले जाएंगे कि हमें दुख वहां से मिलता है कि जिस चीज के ऊपर हम अधिकार रखते हैं हमें लगता है वहां से सुख मिलेगा, लेकिन होता है उल्टा, वहां से हमको दुख मिलता है। प्रेम में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जो चाहे उसको आगे बढ़ाने के लिए हम स्वतंत्रता देते हैं, यह हमारे दिल की निर्माणता उसमें बढ़ जाती है। अटैचमेंट में हमारी निर्माणता नहीं होती, हमारा मोह हो जाता है कि वो व्यक्ति मेरे अधिकार में रहना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं उसके अनुसार उसने चलना चाहिए, ये हो गए अटैचमेंट। और फिर हम दोष उसके ऊपर देते हैं। हमेशा एक चीज जीवन में याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता है, हमारा लगाव हमें दुख देता है। बहुत सूक्ष्म बात है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता है। जब हम जिस समय अटैच हो जाते हैं, हमारा लगाव हो जाता है, रिवर्स में हमें दुख मिल जाता है। प्रेम में वो बात नहीं होती। प्रेम एक उदात्त भावना है, औरों के प्रति आगे बढ़ाने की भावना है। छूटने का भय नहीं है, लगाव में छूटने का भय होता है। सबसे पहली बात, ये बहुत एक मानसिक रोग हमारे अंदर भरा हुआ है, और वो ये है कि अगर कल मेरा देह छूट जाए तो, सबसे पहला भय हमारे अंदर ये है। तो क्या? थोड़ा क्वेश्चन मार्क करके आपने आपसे आंसर ढूंढो कि अंदर से क्या आता है। दूसरा कि मैंने जिंदगी में जो कुछ कमाई की है, या रात दिन जो मैं कमाई करके रख रहा हूं, जिनके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, अगर वो मुझे साथ छोड़ देंगे या वो मुझे मेरी केयर नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा। दूसरा भय ये कि वो मुझे छोड़ के जाएंगे तो मेरा क्या होगा। और अंदर का भय कि अगर मैं उनको छोड़ के जाऊं तो मेरा क्या होगा। हमारा लाइफ का कंफ्यूजन कैसा चल रहा है आप सोचो। भय का है कि अगर जो चीज मैंने रात दिन मेहनत करके कमाई की है, अगर वो मेरे से छूट गई तो मेरा कल क्या होगा। उस समय सुख नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अटैचमेंट है, चाहे अपने स्थान के प्रति हो, सेंटर के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, वो एक भय है कि ये जाएगा तो मेरा क्या होगा, या मैं इसको छोड़ के जाऊं तो मेरा क्या होगा। और एक उसके आगे एक भय सताता है कि मृत्यु का भय। सब कुछ सामने होते हुए क्या आज जीवन में सब कुछ आपने प्राप्त किया है, चाहे अलौकिक जीवन में हो चाहे लौकिक जीवन में, जो धन है प्रॉपर्टी है सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन मृत्यु आपको कह रहा है कि ये तुमसे छोड़ के जाना है, तो क्या मैं हंसते हंसते सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं? क्या कहेंगे भाई लोग? अंतिम समय में हम मृत्यु को कहे कि मैं हंसते हंसते सब कुछ छोड़ के लिए छोड़कर आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। क्या समझते आप लोग, तैयार है या अंदर भय है? भय है। तो ये जो भय है, ये भय है अटैचमेंट के कारण। और जब तक हमारी अटैचमेंट है व लगाव है, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता है। हम अप और डाउन होते रहेंगे, कभी खुशी कभी गम कभी रोना, चीज मिली तो खुश नहीं मिली तो दुख, ये हमारे जीवन में नीचे ऊपर चलता रहेगा। हमें जब तक अपने जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन के अंदर बैलेंस करना नहीं आता है, तब तक न हमें बाबा की ब्लेसिंग मिल सकती है, न हम हल्के रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हम व्यस्त हो गए, लेकिन किस बात में व्यस्त हो गए? बाबा भी मुरली के अंदर कहते हैं कि आप व्यस्त हो जाओ तो माया से सेफ रहेंगे, लेकिन थोड़ा सोचनीय है कि हम व्यस्त उन चीजों में हो गए कि जहां ये समझकर बैठे कि यहां से हमें प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और उस चीज को बदलने लगे कि जहां असंभव है उनको बदलना असंभव है, उस चीज के पीछे हम अपना समय लगा देते हैं। लेकिन व्यस्त हमें अपने में होना चाहिए कि मैं बदलू, स्वयं मैं बदलू तो दुनिया बदल जाएगी, इसमें हम व्यस्त नहीं है। और आप सोचिए, किसी को भी कुछ पूछो, चाहे सेंटर पर भी कोई नए लोग आते हैं तो वो कहते हम व्यस्त बहुत है। वास्तविक व्यस्त कोई नहीं होते हैं, जीवन की दिनचर्याओं को लोगों ने अस्त व्यस्त कर दिया है, इसलिए जीवन में वो मस्त भी नहीं रह सकते। तो ये अपने आप को पूछना है कि हम व्यस्त का है। बाबा की दिनचर्या को आप सामने लाओ और दिनचर्या से अमृत वेले से लेकर रात तक अगर हम दिनचर्या में व्यस्त है तो वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं टू मच बिजी हूं, कभी भी नहीं कह सकते। लेकिन हमारी दिनचर्या में ही अस्त व्यस्तता है, इसलिए हम न सही तरह से हम व्यस्त रहते हैं, न हम स्वस्थ रहते हैं, न हम मस्त रह सकते। अगर हमें व्यस्त रहने की युक्ति आ जाए कि हमें किस तरह व्यस्त रहना है, बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक सब कुछ बता दिया है, सारे समस्याओं का समाधान किसमें पता है आपको? किसमें है सारे समस्याओं का समाधान? किसमें है? राइट, सारे समस्याओं का समाधान बाबा ने मुरली में दे दिया है। अभी आप में से मुझे बताओ कि आज किसने मुरली सुनने के बाद दोबारा मुरली पढ़ी है? सुबह क्लास के बाद क्लास सुना लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल मुरली पढ़ी? देखो कितने थोड़ों ने हाथ उठाए। ये बहुत महीनता है, हमने ये दादियों से सीखा। गुलजार दादी से एक बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया था तो दादी ने कहा कि सारी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है सिवाय मुरली के। जब भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, मन में कंफ्यूजन हो, मुरली एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, सारे सवालों का जवाब मुरली में आ जाता है। लेकिन जो मुरली हमें मधुर बनाती है, मीठा बनाती है, उस मुरली के प्रति हमारी दीवानगी नहीं है। और जब दीवानगी नहीं है तो वो रस हमें उसका अनुभव नहीं होता है। एक नियम के माफिक हम चलते हैं कि पढ़ना है, सुनाना है, सुना दिया, बस बात खत्म। मुरली क्या चीज है, उसका रस खुद को आ जाए तो सुनाने वालों को भी उसका रस का अनुभव होगा। पहले खुद को उसका रस आना चाहिए। पहली दिनचर्या हमारा आदि का समय अमृत वेले से शुरू होता है। अभी यहां तो सभी ने अमृत वेला किया होगा, उठते होंगे। जो अपने स्थान पर कभी अमृत वेला मिस नहीं करते वो हाथ खड़ा करो। यहां नहीं, वहां जहां रहते हैं वहां कभी भी अमृत वेला किसी भी कारण से मिस ही नहीं होता है। देखो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए हम एक बार ताली बजाएं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आदि का समय, व्यस्त होने का समय हमारा अमृत वेले से शुरू हो जाता है। और मैं अपने अनुभव से या चैलेंज से आपको कहूंगा कि जिनका अमृत वेले से और मुरली से प्यार है, उनके जीवन में कोई समस्या आए और वो रुक जाए हो नहीं सकता है, वो उड़ते ही रहेंगे। अगर दो ही चीजें उनकी ब्राह्मण जीवन में बिल्कुल रेगुलर है तो वो रुक ही नहीं सकते, वो उड़ते ही रहेंगे, सदैव खुश रहेंगे, सदैव आनंदी रहेंगे। लेकिन अमृत वेले जब उड़ते हैं तो एक बात मैं आपको अंडरलाइन कराता हूं कि ज्यादा संकल्प लेके बाबा के सामने नहीं बैठो, ज्यादा सोच नहीं चलाओ। हम द्वापर युग से भक्ति मार्ग में मांगते रहे, उलहने देते रहे, क्या क्या हम बहुत कुछ करते रहे, सबको पता है। अभी बाबा के हम बच्चे हैं, अधिकारी है, बाबा के सामने अधिकार से बैठ जाओ। बाबा हमारे लिए है, ऑफिशियली हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए बाबा बैठा हुआ है। और जब आप जागृत अवस्था में आंखों में आंखें डाल के बाबा से आप देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि बाबा आपको क्या बनाना चाहता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा अनुभव है। अगर गलती है मिस्टेक है तो बाबा कहता है कि बस यह मिस्टेक है, सुधर जाओ, यहां अपनी गलती को आप चेक करो और चेंज हो जाओ। बाबा कहता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसको कहते लव। बाप को पता है, मां को पता है बच्चे के अंदर क्या कमी है और उसको मुझे संपन्न बनाना है। समझ में आ रही है बात माता है? अमृत वेले ऐसे अधिकार से बैठ जाओ कि खुले भंडार से बाप दादा हमारे सामने बैठा हुआ है। उस समय ज्यादा संकल्प लेके नहीं बैठो। बाबा जानता है कि बच्ची की कमी भरने के लिए मुझे इसको क्या देना है, इसको किस चीज की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो मां बाप को पता होता है उसको क्या चाहिए, वो बच्चा मांगता थोड़ा है, मांगता है। तो यहां अगर भगवान के बनने के बाद भी अगर हम मांगते हैं, मांगना बच्चों की निशानी नहीं है, बच्चों का तो अधिकार होता है। फिर भी अगर हमारी मांगने की आदत है तो हम देवता कब बनेंगे, अब सोचो। इसलिए जब आप अमृत वेले हमारी दिनचर्या का आदि शुरू होता है, अगर आपको आगे बढ़ना है, वो ब्राह्मण जीवन के सुख अनुभव करना है, तो ये रजई से या जो बेड है आपका उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कई कई करते हैं वहां ही बैठेंगे, बेड पर ही बैठे, उठे तो है लेकिन वहां ही बैठेंगे, ऐसा योग नहीं होता है। अभी 3 मिनट हम बाबा को याद करेंगे।
ध्यान कीजिए।
ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे कि जो बाबा ने हमारे लिए अमृत वेले का जो समय दिया है सफल करने के लिए, और जो कुछ खजाने बाबा ने हमें खुले दिल से दिए हैं, लेकिन उसका हम यूनियोग कैसा करते हैं। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक बार नारद जी, आप लोगों ने बहुत कहानियां सुनी होगी, एक छोटी सी कहानी की जिसके ऊपर हम लाइफ के जो ट्रूथनेस है या जो वैल्यूज है वो कैसे निखर जाते हैं। तो एक बार स्वर्गलोक से नारद जी विष्णु जी से छुट्टी लेके पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए निकले। जब वो पृथ्वी लोक पर आए तो सबसे पहले उनको एक गरीब व्यक्ति मिला, और गरीब व्यक्ति मिला तो नारद जी ने उसको पूछा कि भाई आप कैसे खुश हो, ठीक हो, आपके हालचाल कैसे, जैसे हम एक दो को पूछते। तो नारद जी ने उसको पूछा कि आप कैसे ठीक हो, तो वो अपना दुख वर्णन करने लगा, अपना जो दुखड़ा है जो कहते हैं, वो नारद जी को कहने लगा कि आप तो जानते हैं कि मेरी यह हालत है, खाने के लिए भोजन नहीं है, आप भगवान जी को कहो कि मुझे धनवान बनाया जाए। वो कंप्लेंट सुन के नारद जी आगे बढ़ते हैं। जब आगे जाते हैं तो उनको एक धनवान व्यक्ति मिलता है, और धनवान व्यक्ति को वो पूछते हैं कि आप कैसे ठीक हो, खुश हो। वो कहता है कि हम खुश तो नहीं, संतुष्ट तो नहीं, धन है लेकिन हम खुश नहीं है, हमारी खुशहाली का क्या राज है, आप भगवान को जरूर पूछिए कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उसको धन में सुख नहीं मिल रहा था। तो ये जब वो नारद जी जब धनवान व्यक्ति को मिलने के बाद आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद कुछ धर्म के लोग, धार्मिक प्रवृत्ति जिसको हम साधु लोग कहते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, कई ऐसे साधु लोग मिले। तो जब उनको नारद जी ने पूछा कि भाई आपकी क्या हालचाल है, आप खुश हो जीवन के अंदर, ठीक हो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो स्वर्ग में मौज करते हो, वह भ्रमण करते हैं, भगवान जी को कहना कि कभी हमें भी स्वर्ग का दर्शन करो, क्योंकि यहां तो हम दुखी देखते हैं, यहां कोई हमारा ध्यान ही लगता है। तो ये तीनों कंप्लेंट लेके, पहले गरीब व्यक्ति की, दूसरे धनवान व्यक्ति की, और तीसरे जो साधु लोग थे उनकी कंप्लेंट लेके नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचा। जब विष्णु जी के पास नारद जी गए तो विष्णु जी ने पूछा कि भाई पृथ्वी लोक की क्या हालचाल है। तो ये तीनों की जो कंप्लेंट है, नारद जी ने विष्णु जी को कहा कि गरीब लोग कहते हैं कि हमें धनवान बना दो, धनवान कहता है कि धन तो है लेकिन मुझे मन की संतुष्टि नहीं है, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो धर्म का काम करते या लोगों को धर्म का उपदेश करते हैं वो कहते कि हमें स्वर्ग का आनंद नहीं है या कोई हमें सुख नहीं मिलता है। तो उसके क्या आंसर देना है, नारद जी ने विष्णु जी को पूछा कि उनको मैं नीचे जाके क्या आंसर दे दूं। तो सबसे पहले जब गरीब व्यक्ति था, विष्णु जी नारद जी को कहते हैं कि उसको जाकर ये कहो कि तुमको मैंने स्वस्थ तन दिया है, बुद्धि दिया है, बल दिया है, सब कुछ दिया है, तुम अपना जो दोष है, गरीबी का जो दोष है, वो भाग्य को और ईश्वर के ऊपर थोप देता है, वास्तविक चाहे तो तू मेहनत और कठिन परिश्रम करके क्या नहीं कर सकता है, जो चाहे वो जीवन में तुम हासिल कर सकता है, लेकिन दोष दूसरों के ऊपर, भाग्य के ऊपर और भगवान के ऊपर देता है कि भगवान ने मुझे ऐसा गरीब क्यों बनाया, मेरे भाग्य में यही लिखा है, ये दुख का रोना रोने से नहीं चलेगा, उसको कहो कि तू मेहनत करो, तुम्हारे पास स्वस्थ तन है, बुद्धि है, बल है, सब कुछ मैंने दे दिया है, तुम उसका विनियोग नहीं कर रहा है, हाथ पर हाथ बैठ के बस दूसरों की तरफ देख के, दूसरों के सुख को देख के ये सोचता है कि लोग तो सुखी, मैं दुखी क्यों, दूसरों का सुख देख के ही उसको दुख हो जाता है। सबसे पहले उसको ये कहो। दूसरा जो धनवान व्यक्ति है उसको तुम ये कहो कि मैंने धन तुमको इसलिए दिया था कि अतिरिक्त तो जो तुम्हारा धन है वो धन तुम समाज के गरीब लोगों में बांटे, समाज का कार्य करें, लेकिन तुमने उस धन को बैंक में रखा, इसलिए वो जो धन है तुमको मानसिक पीड़ा देगा, संतुष्टि नहीं देगा। वो धन तुमको रखने के लिए नहीं दिया था, तुमको बांटने के लिए मैंने दिया था, लेकिन तुमने एक स्वार्थ वृत्ति से उस धन का विनियोग अपने लिए करके रखा, भविष्य के लिए करके रखा, समाज के लिए नहीं किया। इसलिए उसको ये कहो कि इसलिए तुम्हारी मानसिक पीड़ा तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे धन का विनियोग तुम समाज के लिए नहीं करोगे। और तीसरे जो साधु लोग थे जो धर्म का प्रचार करके लोगों को उपदेश देते थे, कहा जाता है कि उपदेश देना बहुत सहज है, आदेश देना बहुत सहज है, लेकिन आचरण करना सबसे बड़ा कठिन है। और जिसको आचरण करना जीवन में आ गया, उसके लिए उपदेश और आदेश देने के लिए जरूरत ही नहीं होती है, उसका जीवन ही सभी के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जब तीसरे व्यक्ति को जो साधु लोग थे, साधु लोगों को विष्णु जी ने कहा कि उनको ये कहो कि तुमको जो ज्ञान मैंने दिया था वो औरों को बांटने के लिए दिया था, लेकिन ज्ञान देते देते तुम्हारे अंदर दो प्रवृत्ति जागृत हो गई। एक, तुम अपने स्वार्थ में लग गए कि मेरे लिए भी कुछ चाहिए, और दूसरे तुम्हें ज्ञान का अहंकार आ गया। ये दो चीजें तुम्हें डुबो ले जा रही है, इसलिए तुमको स्वर्ग का आनंद मिल नहीं सकता है। तीनों के उत्तर विष्णु जी ने नारद जी को दिया। तीनों को जाके कहो, जब तीनों को जाके नारद जी ने ये कहा तो तीनों ही अपने तरफ खुद के तरफ देखने लगे कि गलतियां हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते थे, दूसरों के अंदर ढूंढते थे। तीनों ने भी इस चीज को समझ लिया कि सचमुच ज्ञान मिलने के बाद कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं बना हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके अंदर अगर निस्वार्थ भावना है, निमित्त भाव है, निर्मानता है, तो वो ज्ञान दूसरों को सुख देगा, दूसरों का जीवन बनाएगा। ज्ञानी आत्माओं को अगर अहंकार आता है तो वो डूबो कर ले जाता है, लेकिन ज्ञानी वो है कि जिसके जीवन के अंदर नम्रता आ जाए, वो है सच्चा ज्ञानी, वो झुकना सीख जाए। इसलिए दुनिया के अंदर कहते झुकता वही है जिसमें जान होती है, आकड़ना तो मुर्दे की निशानी होती है। कई ये समझते हैं कि हमने गलती नहीं की है, हम क्यों सॉरी बोले। कई ऐसे भी होते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैं सॉरी क्यों बोलूं। अरे सॉरी बोल दिया तो क्या आप कम हो गए? आप ट्राई करके देखो, जिसके अंदर ताकत होती है वो गलती न होते हुए भी सॉरी कहता है, और जब वो सॉरी कहता है तो सामने वाला 10 बार उसके आगे झुकेगा। प्रैक्टिकल अप करके देखो। लेकिन पहले हमारे बुद्धि का अहंकार हमें झुकने नहीं देता है, हम कहते हैं कि दूसरे झुके, दूसरे बदले, मैं क्यों झुकूं। तो ज्ञान कहता है कि अपने अंदर जाके आप नम्र बनो, झुको, तो सामने वाला झुक जाएगा। और जब हम जीवन में झुकना सीखते हैं तो झुकने वालों को हजारों लोग उठाने के लिए निमित्त बनते हैं, लेकिन जो आकड़ता है उसको उखाड़ने के लिए भी हजारों लोग पैदा हुए हैं। इसलिए जब तूफान आता है तो तूफान में क्या होता है, जो पेड़ झुकता है वो तूफान जाने के बाद खड़ा हो जाता है, लेकिन जो बांस का पेड़ है वो अकड़कर खड़ा रह जाता है, तो जड़ से ही वो उखड़ जाता है। तो बाबा हमें रोज जो व्यस्त रहने के लिए जो दिनचर्या देते हैं, अमृत वेले से जो हमारी शुरुआत हो जाती है, वो इसीलिए है कि हम भरपूर हो जाए, दिन भर की फील्ड में हम भरपूर हो जाए। अभी आप दुनिया के अंदर देखते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे धर्म का काम करने वाले हो, लेकिन जो धार्मिक संप्रदायता जो बढ़ रही है, आतंकवाद जो बढ़ रहा है, वो विचारों में मतभेद आने के कारण इतना बढ़ता जा रहा है कि कल कुछ भी हो सकता है। किसी भी धर्म के बारे में उसको हम कुछ राय देने लगे तो उनको वो सहन नहीं होता है, क्योंकि लोग विचारों के बहुत पक्के हो गए, किसी की भी बात लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कुछ का है उस पर अड़ी हुई, इसलिए आतंकवाद दिनों दिन दुनिया में बढ़ता जा रहा है। उनको इतनी अटैचमेंट हो गई, चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे देह के प्रति हो, सब प्रकार के अटैचमेंट। और यही एक दुख का कारण है कि जब चीजें छूट जाएगी तो सारे संसार में हाहाकार हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि आने वाले समय में वो सीन देखने के लिए ऐसी साक्षीपन की अवस्था हमारी होना जरूरी है। अगर आज राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, धर्म सत्ता सब तो हलचल में है ही, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो सत्ता है, बाबा के जो बच्चे हैं, अगर हम अपने तरफ नजर दौड़ाएं तो हमारी हलचल क्या है? हम अचल है? अचल है? आने वाले पेपर में पास होने के लिए हमारी तैयारी क्या है? बाबा की जो वाणी चली अभी, बाबा ने होशियार स्टूडेंट उसको कहा कि आने वाला पेपर और उसका आंसर पहले ही पता हो, ताकि एग्जाम में जब बैठेंगे तो हम सोचने का, उसमें सोचने का भी टाइम नहीं होता है, हम फटाफट लिखे और पास हो जाएं। यहां तो बाबा ने सब कुछ पहले ही बता दिया है कि ये पेपर आने वाला है और उसका जवाब भी बता दिया है कि आपको नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना ही पड़ेगा, इन चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा, वास्तविक सत्य है। और सुख का रास्ता अगर आप देखेंगे गहराई से तो त्याग से गुजर कर जाता है, प्राप्त करने से या चीजों को इकट्ठा करने से आपको सुख नहीं मिलेगा। आप भेद के वैरागी बनो, डिटैच हो जाओ, सुख आपके पीछे परछाई के समान आ जाएगा। हम रिवर जा रहे हैं कि ये चीजें हमारे पास हो, ये हो तो मुझे सुख मिलेगा। बिल्कुल भौतिक चीजों में सुख देने का कोई सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि वो जड़ होती है। ये भी कुर्सी है, आप सोचो, ये माइक है, ये मेरे फीलिंग के ऊपर है कि मुझे कितना कंफर्टेबल महसूस होता है, मुझे कितना सुख फील होता है, क्योंकि वो जड़ है, उसमें चैतन्यता नहीं, चैतन्यता मेरे अंदर है। और हम जड़ की तरफ भाग रहे कि वहां से हमको मिलेगा, वहां से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा जो आपको आपके अंदर से मिलेगा। और हमको अपने अंदर से झांककर देखने के बजाय हम बाहर की ओर दौड़ते हैं, इसीलिए जीवन के अंदर दुख की फीलिंग 24 आवर्स में अगर आप पुरुषार्थ का थर्मामीटर देखेंगे तो उसमें आप ये चेक करो कि मेरे सुख के क्षण कितने रहे, जीवन के अंदर मैं आनंदित कितना रहा, दुख की फीलिंग मुझे कितनी आई, कितने बार मेरे मूड ऑफ हो गए, कितने बार दूसरों का मूड ऑफ किया, कितना मैंने खुद को निगेटिव फील किया, तो आपको पता पड़ जाएगा। नहीं पता पड़ता है तो बाबा दर्पण, बाबा के आगे जब बैठ जाओ बाबा बता देगा कि सो पुरुषार्थ की स्थिति कहां तक है, कहां तक लेवल है, कहीं पूछने की भी जरूरत नहीं। तो इसके लिए हम अपने अंदर से जितनी त्याग की प्रवृत्ति होगी कि आज भी अगर मेरे से सब कुछ छूट जाए तो हम हंसते हंसते बाबा के पास जाने के लिए तैयार है, इतने हम एवरेडी चाहिए, इतनी हमारी एवरेडी स्टेज हो, तब हम कहेंगे कि पास विद ऑनर होके सम्मान से बाबा के सामने हम तैयार है। वो होशियार स्टूडेंट है फर्स्ट नंबर में कि हम एवरेडी है, कोई भी पेपर आ जाए। छोटी सा दृष्टांत मुझे याद आया कि लास्ट का जो पेपर है हम सभी के सामने जो आने वाला है, मैं आपको बताता हूं, महाभारत के अंदर एक दृष्टांत है, आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत सभी ने देखा होगा, सबने देखा है, क्योंकि हम उसके स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक रहस्य उसको नहीं समझते। कि एक दृष्टांत बाबा मुरली के अंदर देता है कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, आगे क्या हो गया वो कुछ बताया नहीं, पता है कुछ? पांडव पहाड़ों पर गल मरे, आगे कुछ है? लेकिन उसका हमने प्रैक्टिकल देखा, आप लोगों ने देखा या नहीं पता, कि जब हम लोगों का अंतिम समय होगा इस दुनिया से जाने का और नई दुनिया में आने का, तो वो सीन क्या होगा? उसके बीच में एक फासला है, वो ये फासला है कि हमको देह को और संबंधियों को छोड़ के जाना है, और उसके बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में जो कड़ी आती है वो है मोह। पहले मैंने आपको अंडरलाइन किया अटैचमेंट, छोड़ने की अटैचमेंट, वो सबके सामने आएगी। इसलिए उसके गहराई में जाके हमें ये चेक करना है कि वो कहां अंश है। होता क्या है कि जब पांडव, पांच पांडव द्रौपदी सहित कुत्ता लेके जो पहाड़ों पर चलते हैं, तो नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, ये जब चलते साथ में कुत्ता होता है, द्रौपदी भी होती है, तो द्रौपदी को देह का अभिमान आ जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म है देह भान और देह अभिमान, ये बहुत सूक्ष्म रगे, एक जैसे कहते कि आत्मा के अंदर एक लेयर होती है संस्कारों की, समय प्रति समय वो लेयर बाहर आ जाती है। योग में बैठेंगे तो बहुत खुश होंगे, अगर योग नहीं लगेगा तो वो पुराने संस्कारों की जो लेयर है जिसको हम परते कहते हैं वो बाहर आ जाती है। तो ऐसे उसको द्रौपदी को अभिमान आ जाता है देह का, और उसमें उसकी डेथ हो जाती, शरीर छोड़ देती है, बहुत तड़पना पड़ता है। फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन अपने अपने कमजोरी के कारण, किसी को बल का अभिमान, किसी को बुद्धि का अभिमान, उससे वो अपना अपना कुछ अंतराल के बाद पहाड़ों पर चलते चलते शरीर छोड़ देते हैं। उसमें से सिर्फ युधिष्ठिर रहता है, और आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा को भी युधिष्ठिर का टाइटल शिव बाबा ने दिया हुआ है कि ये युधिष्ठिर है, क्योंकि वो अकेला मंजिल पर पहुंचने का ठान लेता है कि मुझे मंजिल पर पहुंचना है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन इनको मुझे पीछे छोड़ना है, मुझे आगे देखना है। युधिष्ठिर कुत्ते को लेके जब आगे बढ़ता है, एक बार सिर्फ वो पीछे मुड़ के देखता है कि जो कुछ यहां तक थे वो मुझे छोड़ के गए, मुझे आगे जाना है, उसके बुद्धि में लक्ष्य रहता है। वो कुत्ता साथ में रहता है, कुत्ते को ले लेता है, और वहां स्वर्ग में इंद्रदेव उसके स्वागत के लिए तैयार रहता है कि तू ही पास हो गया, नष्टो मोह तू ही हो गए, इसलिए मैं स्वागत के लिए तुमको रिशु करने के लिए यहां आया हूं। तो उस समय वो दृष्टांत बहुत अच्छा है कि युधिष्ठिर के हाथ में कुत्ता होता है, तो जब इंद्र उसको कहता है कि सम्मान सहित आप स्वर्ग में आ सकते हो, तो होता क्या है कि स्वर्ग में आते समय वो कुत्ते को नहीं छोड़ता है, कुत्ते को भी साथ में लेने लगता है, तो इंद्र उसको रोक लेता है, कहता है कि वहां पशु योनि को आप नहीं ले जा सकते, कुत्ता वहां नहीं जाएगा, उसको वहां ही छोड़ना पड़ेगा। अभी वहां युधिष्ठिर की परीक्षा आ गई। उस समय उनका संवाद चलता है, और उस समय संवाद चलते चलते जब युधिष्ठिर इंद्र की बात नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे इसने यहां तक साथ दिया है, इसको मैं लेके जाऊंगा। फिर धर्म वहां प्रकट होता है और धर्म न्याय की बात सुनाता है, और जब न्याय की बात सुनाता है तब अर्जुन, युधिष्ठिर तब चुप हो जाता है, लेकिन जाते जाते लास्ट में स्वर्ग में जाते जाते युधिष्ठिर एक संदेश छोड़कर जाता है, और वो संदेश ये है कि जीवन में जो अब तक आपके साथ रहे, जिन्होंने जो आपके साथ रहे, जो छोड़ के गए, उनको छोड़ना तो बहुत सहज है, उनको भूलना भी सहज है, लेकिन जो जीवन के अंत तक जो साथ देता है, आपके साथ चलता है या आपकी सेवा करता है, 24 आवर्स आपके साथ रहा है, उसको लास्ट के समय में छोड़ना सबसे कठिन पेपर होगा। समझ में आई ये बात? सबके सामने ये पेपर आएगा, जो शरीर छोड़ के चले गए उनको हम भूल गए, कोई बात नहीं, वो आने वाले नहीं, सारा नॉलेज बुद्धि में, लेकिन जिनके हम साथ में है, जिन्होंने जीवन के अंत तक आपको साथ दिया है, किसी भी फील्ड में वो आपके साथ खड़े रहे हैं, कभी भी आपके मदद के लिए वो तैयार रहे हैं, और उस समय उनको भी भूलना ये सबसे बड़ा कड़ा पेपर होगा। तब युधिष्ठिर इंद्र को कहता है कि आज मैं समझ लिया कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना कितना कठिन है, कि मेरी पत्नी मेरे भाई उन्होंने जहां तक साथ दिया, एक बार मैंने पीछे मुड़ के देख लिया कि वो चले गए, कोई बात नहीं, शरीर छोड़ दिया, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये कुत्ता तो मुझे यहां तक लेके आया, यहां तक मंजिल तक उसने साथ दिया, और आप कहते कि इसको भी छोड़ दो, ये बड़ा मुझे कठिन लग रहा है। अभी हमें ये सोचना है कि जीवन के एंड में हमारी मोह की रग कहां जाएगी, इसके लिए गहराई चाहिए। अमृत वेले आप चेक करो अच्छी तरह से अंदर जाके कि मेरा बार बार जहां बुद्धियोग जा रहा है वो चीज मुझे लास्ट में धोखा देगी, दुख देगी, परेशान करेगी, मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, इसलिए उसको भी मुझे छोड़ना है। ये पहला मुझे पक्का करना पड़ेगा। मैं अपने अंतिम सीन को देखूं कि जाऊं तो ससम्मान से जाऊं, पास होके जाऊं, लेकिन उसके लिए अभी योग में वो मेहनत योग से होगी, पढ़ाई पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन योग की मेहनत ये है कि जीवन के लास्ट में बाबा सामने हो, बाबा के हाथ में हाथ हो, ये हमारी पढ़ाई की रिजल्ट के हम उसमें पास विद ऑनर हो गए। तैयार है सब, पेपर देने के लिए तैयार है ना हम? बाबा ने पहले बोल दिया है, उसका आंसर भी बता दिया है, अभी कोई डिफिकल्ट है? माता है भाई लोग, कोई डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है तो फिर लास्ट में कभी ये नहीं कहे ना बाबा को कि बाबा ये पता नहीं था कि ये छोड़ना भी इतना कठिन है, बाबा ने पहले कह दिया है कि छोड़ो तो छूटे, अभी ही बुद्धि से भूल जाओ। छोड़ो मतलब ये नहीं कि उनसे दूर हो जाओ, लेकिन साथ निभाते निभाते उनसे अटैच नहीं हो जाओ, उनसे डिटैच रहो तो जीवन में प्रेम बना रहेगा। पहले जैसी मैंने शुरुआत की थी कि जो हम व्यस्त रहते हैं, व्यस्त अपनी बाबा की दिनचर्या में रहो, न कि वो माया की जो दिनचर्या है उसमें व्यस्त रहो, और जब वहां व्यस्त रहते हैं तो निगेटिविटी आ जाती है, और यही निगेटिविटी हमें अपने आप से दूर ले जाती है, हम पॉजिटिविटी से दूर जाते हैं, और जो नकारात्मकता है, जैसे बाबा कहते हैं वो एक डस्टबिन की तरह पुरानी सड़ी हुई बातें बुद्धि में रह जाती है, और वो हमें आगे बढ़ने के लिए तकलीफ देती है। जहां से हो गया वहां से डिलीट करके आगे बढ़ो, क्योंकि बुद्धि में हमेशा मंजिल, बाप और लक्ष्य हमेशा होना चाहिए। तो जरूर हम समय के पहले क्या कि हमें स्पष्ट अनुभव होगा कि हम पहुंचे कि पहुंचे। अभी कंफ्यूजन में अगर आप में से किसी को पूछे कि हम शरीर छूटने के बाद क्या बनने वाले, किसी को भी अंदर से आवाज नहीं आता कि हम ये बनने वाले है, कोई आप में से, आप में से कोई है कि हम क्या बनने वाले? रोज हम मुरली पढ़ते हैं, रोज लक्ष्य सामने, लेकिन मेरा एक्चुअली क्या पद है वहां स्वर्ग में, मेरा क्या पद है? जब तक वो बुद्धि में क्लियर नहीं होता है तब तक हम दौड़ी नहीं पहन सकते, और उसके लिए चाहिए बुद्धि की क्लियरिटी, सच्चाई, सफाई, सब बातों में बाबा के सामने आप रख लो, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, फिर आप देखना बाबा आपको क्लियर दिखाई देगा, मंजिल भी दिखाई देगी, बाबा की क्लियर टचिंग भी आएगी। और लास्ट बाबा की ये वार्निंग है सभी को, सूक्ष्म इशारे भी है कि अंत काल में बहुत काल का अभ्यास ही काम आने वाला है। कहीं ये सोचेंगे कि आगे चल के देखेंगे, देख लेंगे, चल तो रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि देखते 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 कहीं हम आलबेले और आलस्य के डनलप के गद्दे लेके सो जाए, चलो देख लेंगे हो जाए, हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमारा उमंग उत्साह न खुद का न औरों का किसी भी बेस पर कम नहीं होना चाहिए। दुनिया में हलचल हो, हम अंगद के मिसल अचल रहे, दुनिया में क्या भी हो लेकिन मेरा बुद्धियोग बाबा से जुटा रहे, मुझे किसी भी रिंचक मात्र भी कहीं भी एक क्यों क्या कैसे ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी होना था क्या, ये संकल्प आने वाले समय में हमारे बुद्धि में नहीं आना चाहिए। और उसके लिए मैं और एक बात आपको ऐड करता हूं लास्ट में, पहले जैसे का अमृत वेले का योग, मुरली, और रात को सोते समय, शाम को तो 6:30 से 7:30 आप लोग वहां भी योग करते होंगे, वो हमारा कंपलसरी है, वो भी योग कहीं भी हो करना चाहिए। लेकिन रात को सोते समय अगर मुरली पढ़ के आप सो सकते हैं तो अमृत वेले का आधार है कि आप अंतिम समय सोते समय आपकी स्थिति क्या है। अगर मुरली पढ़ के आप सोते हो तो अमृत वेला आपका इतना पावरफुल होगा कि जैसे कि वैसे प्रिंट हो जाएगा। जैसे बाबा ने एक वाक्य यूज किया, देखो अभी आप लोगों ने मुरली सुने, उसमें बाबा ने कहा कि यहाँ का टीचर ऐसा है कि जो सुना और छप गया। याद है आपको, यहाँ की पढ़ाई क्या है, सुना और आपके अंदर छप गया। तो वो ये है कि रात को आप मुरली पढ़ के सो गए और अमृत वेले आप उठ गए, ये बीच का फासला भूल जाओ, जो नींद का जो फासला है उसको भूल जाओ, जो आप सो गए सोते समय जो पढ़ा वो अमृत वेले आपके सामने आ जाए। ये है बुद्धि की सत्व प्रधानता। ये मैं 15 साल से अभ्यास कर रहा हूं कि रात को सोते समय बिना मुरली पढ़ के सोना ही नहीं है, और उसका रिजल्ट ये है कि जो आपने मुरली पढ़ लिया वो अमृत वेले सारी सामने आ जाती, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। सारा दर्पण, जैसे बाबा कहते हैं मुरली दर्पण है, कुछ भी आपको कंपैरिजन करना है, मुरली और आप, बाबा और आप, तीसरा कोई बीच में है ही नहीं। मंजूर है सबको? सबको मंजूर है? ओके, ओम शांति।